शांति। गुण संपन्न ग्रुप की भट्टी में शिलुबेन आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत साल से शिलुबेन को जानती हूं और एक रस अवस्था यदि मैंने देखी है तो शिलुबेन की देखी है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे वो हेल्थ वाइज भी, कभी मैंने ऊपर नीचे नहीं देखा उसको। और गुण संपन्न जीवन सचमुच में शिलुबेन ने बनाया है, तो हमारे लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है, जो इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आते हैं, ये शिलुबेन। तो आपका आज का विषय है अंतर्मुखता एवं गंभीरता। चेहरे से भी हम वो अनुभव कर सकते हैं, तो ये विषय पर प्रकाश डालेंगे शिलुबेन। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी को हम याद कर रहे हैं, तीन बार ओम शांति कहकर याद दिलाते थे, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। बस भट्टी में यही हमें सोचना है, मनन करना है और वो स्वरूप बनना है। तो आज का विषय भी वैसा ही है, अंतर्मुखता एवं गंभीरता। अगर देखा जाए तो गुणमाला में, गुणों के गुलदस्ते में, गुणों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अंतर्मुखता। अगर अंतर्मुखता है तो सब गुण अपने आप आ जाते हैं। और अंतर्मुखता का गंभीरता के साथ बड़ा संबंध है। अगर अंतर्मुखता नहीं तो गंभीरता भी नहीं, और गंभीरता नहीं तो अंतर्मुखता भी नहीं। जो अंतर्मुखी होगा वो गंभीर भी जरूर होगा। दुनिया में तो अंतर्मुखता और गंभीरता को एक कमजोरी मानते हैं, ये भी देखा गया है। जैसे सहनशीलता को कमजोरी मानते हैं, हम क्यों सहन करें? अगर किसने एक गाली दी तो मैं दो दूंगा, क्यों मैं सहन करूं? ये तो कायरता है सहन करना। उसी प्रकार अंतर्मुखता को भी कई लोग दुनिया में एक कमजोरी समझते हैं। कहते हैं अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है ना, वो सदा अकेला ही रहता है, अकेला अकेला। उसको संगठन पसंद नहीं, उसको मिलना जुलना पसंद नहीं, उसी कोई अंतर्मुखी कहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें अंतर्मुखता की डेफिनेशन बहुत ऊंची दी है। अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है कि अकेले अकेले रहना। अंतर्मुखता का अर्थ ये नहीं है कि इतना सीरियस हो जाना, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, ये अंतर्मुखता नहीं है। अंतर्मुखता अर्थात अंतर में अपने मुखड़े को देखना, शाब्दिक अर्थ ही ये है, अंतर में अपने मुखड़े को देखना, अंतर में जाकर अपने आप को पहचानना। और बाबा की मुरलियों में हम कई बार सुनते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में, ये गीत है जिस पर बाबा सारी मुरली चलाते हैं। तो अंतर में अपने मन में जांच करना कि मेरे अंदर में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। किसी ने ठीक कहा है कि सोचने से पहले भी सोचो, मैं क्या सोच रहा हूं, सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोच रहा हूं। सोच लिया, बहुत समय चला गया, फिर कहना कि हाय मैंने ऐसे क्यों सोचा, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन सोचने से पहले भी पहले ये सोचो, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोचने जा रहा हूँ, क्योंकि पता तो चल ही जाता है, ऐसे नहीं कि अपने आप सोच निकलते हैं। मन में कोई भी विचार आते हैं तो पता तो चलता है ना क्या सोच रहे हैं, ये आप पता ही नहीं चलता है। कईयों कहते मुझे पता ही नहीं चला, मैं ये भी यही सोच रहा था। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, वो तो उसको तो कहेंगे एब्सेंट माइंडेड, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मिसाल देते हैं ना कि एक एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर था, वो घर में आया, हाथ में छाता था, अब वो छाते को छाते के स्टैंड में रखना है, लेकिन वो क्या सोच रहा है पता ही नहीं, छाते को बिस्तर पर सुला दिया और खुद छाते के स्टैंड में खड़ा हो गया। अब उसको कहेंगे एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा है, बस कर रहा है बिना सोचे कि भाई छाते को बेड पर रख रहा हूँ और मैं छाते के स्टैंड पर खड़ा हो रहा हूँ। फिर बाद में रियलाइज होता है ये क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा होंगे हम, लेकिन अंतर्मुखी माना जो पहले ये सोचता है कि मुझे सोचना क्या है, क्या मैं जो सोचने जा रहा हूँ वो सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है, या जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसकी अच्छी बात सोच रहा हूँ या बुरी बात सोच रहा हूँ। किसी ने, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उसके बहुत स्टूडेंट्स थे, तो एक स्टूडेंट आया, सर मुझे कुछ किसी के बारे में कुछ कहना है आपको, एक स्टूडेंट के बारे में कुछ कहना है। तो वो प्रोफेसर था, फिलोसोफर भी था, उसने उस विद्यार्थी से कहा पहले ये बताओ जो आप उस व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहते हो वो अच्छी बात है या बुरी बात है। तो उसने कहा मैं तो नहीं समझता हूँ ये अच्छी बात है, बुरी बात ही है। तो बुरी बात है तो फिर क्यों सुनाते हो फिर। अच्छा दूसरी बात, क्या ये सच्ची बात है, सच्ची बात है या सुनी सुनाई बात है। तो कहा मैंने भी सुना है, पता नहीं सच्ची बात है या नहीं, पता नहीं। तो कहा जबकि आपको पता ही नहीं ये सच्ची बात है या नहीं तो फिर क्यों सुनाते हो। अच्छा चलो तीसरी बात, ये जो सुनाते हो उसे मुझे कुछ फायदा होगा क्या या आपको भी कुछ फायदा होगा क्या। तो कहा फायदा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा क्योंकि बुरी बात ही है। तो जबकि इस बात से न मुझे फायदा होगा न आपको फायदा होगा, तो क्यों सुनाना है, क्यों ये भी बोझ अपने मन में रखना है, जरूरत ही क्या है। फिलोसोफर था ना वो, बड़ी बातें सोचता था, तो उसी समय विद्यार्थी को चुप कर दिया, सुनाने ही नहीं दिया। कैसे नहीं, सुनाओ 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 क्या हुआ, मैं देख लूंगा उसको, आप मुझे बताओ क्या किया उसने, नहीं। तो अंतर्मुखता किसे हम कहेंगे, जो पहले सोचने से भी पहले, मैं क्या सोचने से पहले ये सोचे मैं क्या सोचने जा रहा हूं, फिर सोचिए चलो सोच लिया वो तो मन में सोच चलेगी, फिर बुद्धि निर्णय करे कि ये सचमुच ठीक है या नहीं। हाँ, पहले से ही तो पता नहीं चलेगा ना क्या सोच रहा हूं, चलो सोच लिया, फिर बुद्धि निर्णय करे ये ठीक है या नहीं, अगर ठीक है तो करे, नहीं ठीक है तो नहीं करे। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। इंग्लिश में कहावत है लुक बिफोर यू लीप, आप एक जंप मारना चाहते हो तो पहले देखो वहां है क्या, चलने से पहले भी देखो ना वहां है क्या, कहीं वो ऊपर नीचे तो नहीं है, गिर तो नहीं जाऊंगा। अगर देख ही नहीं रहे हैं और बस चल रहे हैं तो गिर सकते हैं, इसलिए पहले पहले तोलो फिर बोलो, ऐसे भी कहा जाता है, पहले तोलो उसका वजन करो, इसका क्या वजन होगा जो मेरे मुख से बोल निकलेंगे, फिर बोलो। और गंभीरता का इसके साथ क्या संबंध है, क्योंकि जो अंतर्मुखी होगा वो इस प्रकार से गंभीर भी होगा, ये नहीं जहां आया जो आया बोल दिया। कई बार साइलेंस में रहना, शांत रहना, वो ज्यादा लाभकारी है, और कई बार बोलना पड़ता है वो ज्यादा लाभकारी है। तो कुछ भी हो उसमें लाभ किस में होगा, बोलने में लाभ होगा या चुप रहने में लाभ होगा, तो ये पहले से ही सोचना होता है, इस चुप रहने में लाभ होगा या बोलने में लाभ होगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है अगर हम चुप रहते हैं तो नुकसान ही होता है, और कई बार ऐसे होता है हम बोलते हैं तो नुकसान होता है, शांत रहते तो ठीक रहता, और कई बार शांत रहते तो बिगड़ जाता है मामला, उस समय हम बोलते तो बात ठीक हो सकती थी। तो गंभीरता का अर्थ ये है, गंभीरता का अर्थ ये नहीं है कि ठीक है सब अंदर में संभालो। तो जैसे हम अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति बताते हैं, उसी प्रकार ये अंतर्मुखता और गंभीरता भी है। और अंतर्मुखता की तुलना हम किससे करते हैं, एक कछुए से। कछुआ जब उसको चलना होता है तो चलता है, हाथ पैर निकाल करके, सिर निकाल करके चलता है, उसके ऊपर एक कवच होता है, और जब नहीं चलना होता है तो हाथ पैर सिर सब अपने कवच के अंदर डाल करके शांत हो जाता है। कई बार हमने कछुओं को देखा है घंटों घंटों बस वहीं बैठे हैं, हाथ पैर सिर अंदर डाल करके। तो अंतर्मुखी अर्थात जब कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, माना जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। आज की दुनिया की हालातें तो ऐसे ही है, क्या समाचार आता रहता है, टीवी खोलो अखबार देखो किसी से भी सुनो, संसार समाचार क्या आ रहा है, सब रावण का समाचार है। जैसे बाबा सिनेमाओं के लिए कहते हैं ना, सिनेमा सिन की माँ, पाप की माँ है सिनेमा। काम और क्रोध का क्या रूप होता है वो सिनेमा से पता चलता है। जो बड़े बड़े हत्यारे हैं या गुंडे हैं, हाँ बहुत है आज की दुनिया में, न जाने क्या क्या है, वो सिनेमा से क्या क्या सीख लेते हैं, या जो भी गलत काम समाज में कर रहे हैं वो सीखा कहाँ से? सिनेमा से। नरक का द्वार है, तो बाबा कहते वो सब देखते हुए भी नहीं देखो। हम लोग मधुबन में रहते हैं तो इन बातों से कितना सेफ है, बहुत सुरक्षित है। एक किले के अंदर जैसे एक सुरक्षा का ये किला है जहाँ कोई दुश्मन वार नहीं कर सकता, उसमें हम सेफ हैं। लेकिन ये भी कहावत है कि किले के अंदर तो हम सुरक्षित हैं, बाहर का कोई वार नहीं होगा। लेकिन सच्ची सुरक्षा उस किले में तब मानी जाएगी जब जो अंदर में रहते हैं, अंदर उस किले के अंदर रहते हैं, वो भी अंतर में भी सुरक्षित रहे। केवल बाहर की सुरक्षा की बात नहीं है, अंतर की सुरक्षा, क्योंकि अंतर में कौन दुश्मन बैठे हैं? ये विकार है ना, इनको तो कोई दीवार नहीं चाहिए ना अंदर घुसने के लिए। वो चोर डाकू लुटेरे या खूनी या जो भी कोई भी आतंकी या जिसको भी अंदर घुसना हो तो ऐसे सहज नहीं घुस सकेगा किले के अंदर। जरा सा उसने कोई सुराख देखी तो घुसेगा, घुसेंगे। लेकिन ये जो अंदर में बैठे हुए हैं उनको कौन सी सुराख चाहिए? हमारी कोई भी छोटी सी कमजोरी वो उनके लिए सुराख बन जाती है। कोई कोना मिल जाता है, कोई खुला एक स्थान मिल जाता है घुसने के लिए। जैसे वायरस के लिए भी कहते हैं ना, शरीर में कमजोरी है, इम्यूनिटी कम है, तो ये वायरस अटैक करेगा। इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाओ, और प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएंगे तो ये वायरस कुछ नहीं करेगा, वो अंदर घुस भी नहीं सकेगा। क्योंकि कमजोरी पर ही वो आक्रमण करते हैं, तो अंदर की कमजोरी। और अंदर की कमजोरी का कैसे पता चलता है? हमारे ही विचारों से, हम क्या सोच रहे हैं। तो जहां अंतर्मुखता है वहां गंभीरता इस हिसाब से है कि चलो कोई बात हो गई फिर उसको संभालो, अंदर सबको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंतर में सुरक्षा कब, ये सुरक्षित रहना है, कमजोरी को फैलाना नहीं है। अगर हम किसी का भी वर्णन, कोई बुरी बात किसको कह भी रहे हैं तो हम अपने ब्राह्मण परिवार की ग्लानी कर रहे हैं, है तो अपना ही ब्राह्मण परिवार। अपने घर के अंदर कोई भी बात होती है मान लो, और हम पड़ोसी को जाकर के सुनाते हैं तो क्या होगा? पड़ोसी कहेगा तुम्हारे घर में कितनी कलह क्लेश है। तो पड़ोसी को सुनाने की क्या जरूरत है ना? कई बार हम मिसाल देते हैं, सास बहू का झगड़ा हुआ कुछ आपस में, हाँ लौकिक में देखते ना, सास बहू का झगड़ा हुआ तो बहू अब सास को कुछ डायरेक्टली तो ऐसे कुछ कहेगी नहीं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखेगी ना, डायरेक्ट कैसे कहूँ, तो जाके पड़ोसी को कहेगी। तब पड़ोसी को तो मिर्च मसाला मिल गया है ना, वो मिर्च मसाला मिल गया, अच्छा तुम्हारी सास ऐसे है, हाँ ऐसे 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 है। फिर एक दिन वो सास उसको पड़ोसिन को मिली और कहेगी तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए ऐसे कहती थी, और जितने शब्द उस बहू ने कहे उतने नहीं, उसमें बहुत एडिशन करके उसकी सास को कहेगी। अब झगड़ा चालू हो गया घर के अंदर, तो वहां तो समाने की शक्ति चाहिए। अब इसको इस यहां फिर बाबा कहते गंभीरता चाहिए। बाबा कितने शब्द यूज करते हैं, धूतीपना। धूतीपना किसको कहते हैं बाबा? इसकी कमजोरी उसको, उसकी कमजोरी उसको, सुनाना। एक होता है कैंची का काम करना और दूसरा होता है सुई धागे का काम करना। तो हमको कैंची का काम करना है या सुई धागे का काम करना है? कैंची तो एक को दो करेगी, आपस में अच्छी मित्रता है, लेकिन उस मित्रता को बिगाड़ने के लिए उसकी कमजोरी उनको, उनकी कमजोरी उनको, और फिर जब वो आपस में मिलेंगे तो कमजोरी पहले उनको दिखाई देगी। ये एक को दो किया। और सुई धागे का काम क्या होता है? दो को एक करना है ना, दो टुकड़े हैं कपड़े के, उसको सिलाई करना और दो को एक बनाना। तो वो कैसे होगा? दो अगर अलग भी हैं तो भी दोनों को एक दो के गुण सुनाना, एक दो के गुण सुनाना। मुझे याद आता है एक बार कोई एक हम चंद्रमणि दादी के पास बैठे थे, चंद्रमणि दादी के पास, बहुत पुरानी बात है। तो चंद्रमणि दादी के पास एक बहन आई और किसी दूसरी बहन की शिकायत करने लगी, दादी वो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, कई पता नहीं क्या क्या कहा। तो दादी चंद्रमणि, तो जो जानते हैं दादी चंद्रमणि को कैसी थी, बोले तो वो खूब हंसी, खूब हंसी और कहा, अरे तुम देखो भले वो कैसी भी है लेकिन वो पवित्र कुमारी है। वो 80 साल की बूढ़ी थी। वो किचन में कोई बात हो गई, वो सारा अपना ही खाना बनाती थी किचन में, और किसी को भी छूना नहीं, कोई मेरे सामने नहीं आना, ये नहीं आना, बोला ऐसे थी, छुआछूत वाली थी। तो दूसरी बहन को कुछ कह दिया होगा उसने, और उसने जाके चंद्रमणि दादी को कहा। तो दादी ने सबसे पहले उसको ये कहा, देखो वो जो बहन है ना, आपको पता है वो पवित्र कुमारी है, 80 साल की है, यज्ञ में शुरू में आ गई थी, तो मधुबन में ही रहते थे, तो ये 80 साल की लेकिन पवित्र कुमारी है। आप सोचो, वो देखो इनकी उनकी पवित्रता देखो, उनकी सफाई देखो, कि सफाई इतनी जो बात मत पूछो, जरा सा किसी ने कुछ कर दिया झगड़ा शुरू हो गया, तो कोई उसके नजदीक भी नहीं जाता था। तो एक दिन पता नहीं कैसे कोई नजदीक चली गई, तो बस। तो चंद्रमणि दादी ने उस दूसरी बहन को जिसने शिकायत की उसको समझाया, आप उसकी पॉजिटिव बात देखो, कितनी सफाई है उसके अंदर, कितनी वो पवित्र है, उसकी दृष्टिवृत्ति कहीं नहीं जाती। तो बताओ 80 साल की बूढ़ी की दृष्टिवृत्ति किसमें जाएगी? लेकिन ये बात उसको बताई और कहा कि देखो उसके प्रति आप शुभ भावना रखो, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, बाबा मम्मा की पालना ली है उसने, कोई जब वो आई होगी तो उस समय तो ये यंग होगी, पर कैसे बाबा को अर्पित हो गई वो देखो। अब उस बहन को चुप कर दिया, हम तो मम्मा को देखा। मम्मा की बात मैं सुनाऊं, मैं कई बार ये सुना चुकी अपने अनुभव में, हम छोटे थे उस समय, मम्मा मुंबई में आई हुई थी, 1963 की बात होगी, तो अब तो 1960 में ज्ञान में आए, 12 साल की उम्र थी तब। तो मम्मा कुमारियों का क्लास करा रही थी, तो उस कुमारियों के क्लास में बैठे थे हम, करीब 12-15 कुमारियां थी मम्मा की बॉम्बे में, मुंबई में। तो हम कुमारियों का क्लास करा रही थी और उसी समय एक कुमारी आ गई और खूब गुस्से में, खूब गुस्से में, पता नहीं किसी और के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा, इतनी गुस्से में आ गई। और अब क्लास चल रही है, वो क्लास को नहीं देख रही है, सब कुमारियों को नहीं देख रही है, सीधा जो अंदर में भरा हुआ था ना, आकर के मम्मा को, जैसे गुस्से में मम्मा को शिकायत की। तो मम्मा ने सबसे पहले शांत हो गए, वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, मम्मा ने कुछ नहीं कहा। फिर मम्मा ने एक बात उसको कही, वो बोल रही तो मम्मा का क्लास तो रुक गया। मम्मा ने कहा, अच्छा पहले ये तो बताओ कि कुछ भी हुआ तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैंने कोई गलती की। ये बात मम्मा ने कही। अब मैंने तो कोई गलती नहीं की ना, अभी गुस्से में जैसे अब कोई बात किसी की आपके साथ, आप मुझे गुस्से में कह रहे हैं, तो मैंने थोड़ी वो गलती की, गलती तो दूसरे ने की ना, पर मुझे आप शिकायत कर रहे हो, पर वो शिकायत ऐसे करे जैसे कि मैंने गलती की। तो पहले तो मम्मा ने उसको चुप कराया इस बात पर, मैंने तो कोई गलती नहीं की ना। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत प्यार से उसको कहा बैठ जाओ। अब क्या हुआ, शिकायत तो कर ली थी और बिठा भी दिया मम्मा ने। फिर जिसकी शिकायत हुई थी ना, वो बहन भी आ गई और वो बहन भी बहुत शांति से बैठ गई, क्योंकि कुमारियां थी आपस में, वो बैठ गई, दोनों बैठ गई। और फिर जब क्लास पूरी हो गई तो मम्मा ने इन दोनों को बिठा दिया कि आप लोग रुक जाओ और फिर बाकी सब जाएंगे। तो फिर जो दूसरी बहन थी उससे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ। अब ये मम्मा की देखो विशेषता बताते, कैसे मम्मा कितनी गंभीर थी। ऐसे नहीं कहा कि तुमने ऐसे किया इसके साथ, जो शिकायत पहली वाली लाई थी, नहीं, दूसरी को क्या, आप बताओ क्या हुआ। तो उसने बताई होगी जो भी बात हुई होगी। अब बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, बहुत शांति से उसने, दीदी मम्मा ये बात हुई, ऐसे हुई ऐसे हुई। अब वास्तव में जो वास्तविकता थी वो कसूर पहली वाली का था, लेकिन अपनी बात छिपाने के लिए उसने आते ही दूसरे की शिकायत करनी शुरू कर दी। अब मम्मा तो समझ गई, एक सेकंड में समझ गई। तो पहले मम्मा ने उसी से पूछा, और नेचुरली वो भी तो पहली वाली की शिकायत करेगी। अच्छा उसकी बात सुनी, फिर पहली वाली से पूछा, आप बताओ। अब वो क्या बताएगी, कसूर तो पहली वाली का ही था। अब वो धीरे धीरे शांत हो गई तो कहा, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं थी, अब ऐसी कोई बात नहीं थी, और पहले ही तुम शिकायत करने आ गई थी, तो दोष पहले वाली का ही था। तो कई बार होता है ना, बच्चे होते हैं, वो बच्चे ने किसी को मार दिया, अब मार दिया तो दूसरे बच्चे ने पहले वाले को मारा जिसने पहले मारा था। अब दूसरे को, दूसरे ने मार को, दूसरा फिर उसको मारेगा क्योंकि पहले वाले ने मारा, तो पहले वाला अपने मम्मी को शिकायत करेगा, मम्मी इसने मुझे मारा। अब मम्मी तो मोह के वश होगी, तो दूसरे को शिकायत, दूसरे को डांट देगी, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा, आंटी पहले तो इसने मारा। अब अपने बच्चे को नहीं कहा कि पहले तुमने मारा होगा क्या। यानी क्या है गंभीरता, हम किसको कहते हैं कि गंभीर व्यक्ति ऐसे ही नहीं रिजल्ट बताएगा, ऐसे ही नहीं निर्णय ले लेगा, दोनों की बात समझेगा। निर्णय भी लेना होगा तो दोनों की बात समझ करके निर्णय लेगा, ये गंभीर व्यक्ति की निशानी है। और जब हम कहते हैं समाने की शक्ति, सहन करना, समाना, तो उसमें हम क्या मिसाल देते हैं, सागर का, कितनी नदियां उसमें जाती है सागर में, सागर कैसे समा लेता है, कैसे समा लेता है। अगर किचरा डालो सागर में तो वो किचरा बाहर फेंक देगा, क्योंकि लहरें किचरे को किनारे पर फेंक देगी, हल्की और हल्का होता है किचरा, और भारी चीज डालो तो सागर अपने अंदर ले लेगा। तो काम की चीज ले ली, ग्रहण कर ली, अपने अंदर समा लिया, अपने में परिवर्तन ला लिया, और जब बेकार है वो तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या सुनते हुए नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा, किसको वर्णन नहीं किया। घर की बात है, ये अंदर की बात है, इसको कहते हैं गंभीरता। किसी का भी अवगुण चित पर नहीं रखेगा वो, किसी को भी डायरेक्ट दोष नहीं देगा, क्योंकि हर एक की सोच अपनी अपनी है, हर एक का करने का ढंग अपना अपना है। बाबा ने उस दिन कितनी सुंदर बात की, अव्यक्त मुरली थी दो हफ्ते पहले की बात। बाबा ने कहा, संस्कार सबके अपने अपने हैं, बाबा मम्मा के संस्कार भी अलग अलग थे। मम्मा बहुत गंभीर थी, पर हाँ, जब कोई बात हंसी की होती थी तो मम्मा हंसती भी थी, ऐसे नहीं कि नहीं, किसने मेरे से पूछा, मम्मा कभी हंसती थी, क्योंकि उनके कोई भी मुरली में ऐसे नहीं हंसने का कोई ऐसा आवाज़ था, लेकिन नहीं, क्यों नहीं हंसती थी। बाबा तो बड़े दिल वाले थे, वो उनका अलग ही था, लेकिन मम्मा गंभीर बहुत थी, पर कभी कभी हंसती भी थी, मुस्कुराती जरूर थी हर वक्त, परंतु काम से काम, और बातों में नहीं जाती थी। भले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, दादी जी को भी हम देखते थे, गंभीर भी उतनी, ऐसे नहीं इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, नहीं नहीं, बड़ा दिल, सागर जितना विशाल दिल, जितना ही गंभीर उतना ही गहरा। तो एक है अपने अंदर में अपने आप को झांक कर देखना, वो है अंतर्मुखता। मेरी कमी क्या है, क्योंकि अभी तो मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, और मैं इस बेहद ड्रामा में एक्टर हूं, तो मेरा पार्ट जो है मैं अपने पार्ट को देखूं। तो हम क्या मिसाल देते हैं, जैसे कोई कोई शूटिंग चल रही है किसी फिल्म के लिए, तो उस समय क्या होता है, हर एक अपना अपना पार्ट याद कर रहा होता है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या इस अभी बोलना है, अभी मेरी शूटिंग होगी, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, तो अपने पार्ट को देखेगा। अब दूसरे की शूटिंग माना, दूसरे का पार्ट क्या है, उसके पीछे थोड़ी जाएगा, आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, नहीं मुझे क्या बोलना है, तो अपने पार्ट को याद करता रहेगा, मुझे ये बोलना, और वो अपना पार्ट याद कर रहे हैं, उसको क्या बोलना, हर एक अपने आप को ही देखता है। भले जब शूटिंग हो रही होती है प्रैक्टिकल में, तो उस समय तो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जब पार्ट याद करना होता है, तब अपने पार्ट को याद करेंगे, दूसरे के पार्ट को नहीं सोचना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा इस समय दोनों हो रहा है, शूटिंग भी हो रही है और साथ साथ जो हो चुका है वो रिपीट कर रहे हो, तो कितना अपने पार्ट पर हमको ध्यान देना होगा। ये भी नहीं ड्रामा है इसलिए छोड़ दो, जो कलब पहले हुआ था वो ही होगा, ऐसे नहीं, अपने पार्ट पर पूरा ध्यान दो, दूसरे को मत देखो। तो ये है अंतर्मुखता। और दूसरा कि अगर कोई बात है भी तो संभालो अपने अंदर, किसी को वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या पता कितना, वो भी परेशान होगा अपनी कमजोरी से, और अगर 10 साल के बाद समझो मिले और अब मुझे वो ही पुरानी बात याद है, अभी तो कितना बदल भी गया होगा वो, हम भी कितना बदल गए होंगे। कई बार है ना, कई हमको कहते हैं बहन जी 20 साल पहले हमने आपको देखा था और अब भी देख रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे की वैसी हो ना, जैसे कई कहते हैं ना, हम कहते हैं क्यों, हम बदले नहीं है, थोड़े बाल बाल तो सफेद हो गए हैं, ये सब हो गए, फर्क तो क्यों नहीं आया होगा। और फर्क आना भी चाहिए, कैसे, अंतर की स्थिति में तो फर्क आना चाहिए ना, क्योंकि नहीं आना चाहिए कि वैसे ही होना चाहिए, फर्क आना चाहिए ना, 20 साल पहले की जो स्थिति थी मेरी और अभी की स्थिति में कितनी मेच्योरिटी आ गई होगी ना, क्यों नहीं आ गई होगी। परंतु हाँ, अगर फिजिकली इतना नहीं कोई चेंज है, क्योंकि मानसिक आंतरिक स्थिति ऊंची है, और किसी की आंतरिक स्थिति ऊंची नहीं होती तुरंत उनका फिजिकल बॉडी पर असर आ जाता है, क्योंकि मन का तन पर प्रभाव पड़ता है। कई हम लोगों को कहते हैं खास करके मधुबन में कि आप लोग कैसे इतना अच्छा हेल्थ मेंटेन करिए, सब कितना अच्छा है आप लोगों का, हम कहते हैं बड़ों की छत्र छाया है, बड़ों की छत्र छाया है, अच्छा है मधुबन में रहना, कोई सेंटर पर होते तो न जाने कितनी जिम्मेदारियां होती, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, न पता नहीं क्या क्या होता है, हा? होती तो है ना, सेंटरों पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, या तो हम बड़ों की छत्र छाया में है, जो हमें सेवा मिलती है हम बस वो सेवा करते हैं। चलो कुछ मैनेजमेंट का भी कार्य करना है, ठीक है, अपने लिमिट में हम हैं, बाकी हर एक जानता है मुझे क्या करना है। हर एक को अपने कर्मों की गति का पता है, जो करेगा सो पाएगा ये पता है। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते थे, कईयों की बातें बाबा को आती थी, तो बाबा को ख्याल तो चलता था, लेकिन फिर बाबा कहते थे, फिर बाबा यही सोचते थे, अभी हरे का अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा में विघ्न आना ये भी ड्रामा में है, ये तो होगा ही। आज भी बाबा की मुरली में था, बाबा कहते जल्दी जल्दी जल्दी, फिर शिव बाबा कहते नहीं बच्चे, होगा वही जो ड्रामा में है, हाँ जल्दी जल्दी नहीं होगा। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी, ब्रह्मा बाबा चाहते थे जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, बाबा जो संकल्प करते थे जल्दी हो जाए। इसलिए देखो 33 साल में ही कर्मातीत हो गए, 33 इयर्स में, 36 से 69 तक संपूर्ण बन गए, क्योंकि बाबा को जो लगन थी बस मुझे बनना है। फिर बाबा को ख्याल भी चलता था, बाबा कहते थे तुम बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बाबा पर तो बहुत बोझ है, जिम्मेदारी तो है ना बड़ों पर, तुम बच्चे तो कितने हल्के हो, अपने पुरुषार्थ में सेट लग सकते हो। लेकिन फिर बाबा सोचते थे कि हरे का अपना अपना पार्ट है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और दादी जी जो थी, बड़ी दादी जी, उनकी विशेषता क्या थी? दादी जी से पूछो, दादी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ आपका चलता है, कई बार दादी से पूछते थे। दादी जी कहती थी कि बस मैं तो सबकी दुआओं पर चल रही हूँ, सबकी दुआओं से आगे बढ़ रही हूँ, दुआएं, सबकी दुआएं मुझे मदद कर रही है, यही दादी का जवाब होता था, दुआएं दुआएं, बस यही मैं लक्ष्य रखती हूँ, सबकी दुआएं कमाऊं, सबकी दुआएं कमाऊं। तो दुआएं कैसे कमाएंगे, जब सेवा की भावना होगी, देने की भावना होगी, देवता बनना है ना, तो देवता बनने के लिए ये दो गुण बहुत जरूरी है। वैसे तो सब है, पर आज ये दो गुणों पर ही चर्चा हो रही है। देवताएं कैसे होते हैं, लक्ष्मी नारायण को देखो, बाबा हमेशा कहते उनके चित्र के आगे बैठ जाओ। आज भी बाबा ने कहा विश्व में शांति कब थी, कहाँ थी, कैसी थी, कौन थे वहां, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास ले जाओ, और विश्व में शांति की जब बात सुनानी है ये चित्र दिखाओ, और कैसे इनका जीवन है, कैसे इनका चेहरा है, कैसे धन धान्य से संपन्न है, तन भी दुरुस्त है, मन भी शक्तिशाली है, धन तो अकीचार है, और संबंध तो कितने सुंदर है। ये संपूर्ण मनुष्य का एक मिसाल है, संपूर्ण मनुष्य, देवता को वो कोई देवता को न भी माने तो संपूर्ण मनुष्य कितने अंतर्मुखी है, कितने गंभीर है, कितने हर्षित मुख भी है, यानी गंभीर माना कोई उदास चेहरा या रोती हुई शक्ल या अंदर ही अंदर घुटका खाने वाला, उसको नहीं गंभीर कहेंगे, बैलेंस है, गंभीरता और हर्षित मुखता का बैलेंस है। ये मिसाल है हमारे सामने। तो मुझे याद आया एक 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 डबल विदेशी भाई बाबा के सामने आया, अव्यक्त बाप दादा के सामने, तो मैं तो ट्रांसलेशन करती थी बाप दादा के समय, फॉरेनर्स का ट्रांसलेशन बाबा को कर, बाबा हिंदी में बोलते थे, हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे। तो वो जो भाई था वो आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन उसके अंदर में ये एक मना प्रश्न था कि ये जो लक्ष्मी नारायण है इतनी ड्रेस पहन रहे हैं, इतने हार, इतना सजा हुआ, इतना सब गहने, ये सब हमको पसंद नहीं है ना, डबल विदेशी को वैसे ही पसंद नहीं है सब गहने वहने, ये हमको पसंद नहीं है, इतना ताज सारा दिन पहन के रखने का, ये सब पसंद नहीं है। तो ये बाबा को उसने कहा, वेक बाबा से तो पर्सनल मुलाकात होती थी, कि बाबा मुझे ये जब मैं लक्ष्मी नारायण आप कहते हो और मैं जब इनका फोटो देखता हूँ, परंतु ये सारा जो सजा सजाए रूप है ये हमको पसंद नहीं, सिंपल बस, ये सफेद ड्रेस हमको बहुत पसंद है, ये लक्ष्मी नारायण की ड्रेस ऐसे पसंद नहीं है, या उनका जो आभूषण या जो भी। तो बाबा ने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने उसको कहा, क्योंकि मैं भी सोच रही थी बाबा क्या कहेंगे उसको, तो बाबा ने उसको कहा कि देखो आप आर्टिस्ट हो, हालांकि बाबा को बताया नहीं था ये आर्टिस्ट है, लेकिन बाबा तो सबको जानते हैं। बाबा ने कहा देखो आप आर्टिस्ट हो मानो, और आपको कहा जाए कि एक संपूर्ण मनुष्य का चित्र निकालो, संपूर्ण, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, उसका आप चित्र निकालो। आप कैसा चित्र निकालोगे? एक बूढ़ा कुबजा, वो उसका वो ये कंधा नीचे और ऐसे झुक कर चलने वाला, या लकड़ी हाथ में, या जो बीमार एकदम बिस्तर पर, ऐसा दिखाओगे? कैसा दिखाओगे फोटो, चित्र कैसा बनाओगे? परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, तो कैसा होगा वो चित्र? तन कैसा होगा? रोगी होगा, वो दिखाओगे? नहीं, तन तंदुरुस्त। अच्छा, मन में उदास, अशांत, दुखी, बेचैन, सब चेहरे पर आते हैं ना, मूड आते हैं, 16 प्रकार के मूड दिखाते हैं, वो सब चेहरे पर आते हैं, मन की स्थिति का चेहरे पर आता है। तो कैसा आप चेहरा दिखाओगे? रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, नहीं, मुस्कुराता हुआ, संतुष्ट, कंटेंटेड। अच्छा, धन भी अकीचार हो, गरीब भिखारी थोड़ी दिखाओगे आप, कि भिखारी भीख मांग रहा है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भिखारी थोड़ी होगा। तो धन में भी खूब होगा। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि सतयुग त्रेता में कितना धन होगा, चलो वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना धन होगा, बेशुमार होगा, लेकिन हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि द्वापर में भी सोमनाथ का मंदिर जब बनाया तो कितना धन था। तो द्वापर से अब अंदाजा लगाओ तो उसके पहले कितना नहीं होगा, चलो सतयुग त्रेता का तो छोड़ो, जैसे कोई व्यक्ति बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर है, तंदुरुस्त है और सब कुछ अच्छा है उनका, 60-70-80 साल का भी हो गया तो भी बहुत अच्छा है, तो उसका बचपन जवानी कैसा होगा आप सोच सकते हैं। तो द्वापर में भी इतना धन था तो सतयुग त्रेता में कितना नहीं होगा। तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना, धन में भी संपन्न, अभी धन में संपन्न कैसे दिखाओगे आप? फटे हुए कपड़े पहने हुए ऐसे दिखाओगे क्या? जरूर कुछ रॉयल्टी दिखाओगे, राजाई दिखाओगे ना? और राजाई रॉयल्टी का जो मुख्य स्वरूप है वो तो ताज है, ताज भी होगा उसको, राजाई भी होगी, और फिर चौथा संबंध उसके कैसे होंगे? सबसे लड़ता झगड़ता रहता होगा, अकेला होगा क्या? नहीं, परिवार उसका कितना सुखी होगा। इसलिए कहते हैं चार प्रकार का सुख, तन मन धन जन, तन मन धन जन, चार प्रकार का सुख, वो चारों प्रकार का सुख सतयुग में था, जिसको कहते विश्व में शांति थी। और कलयुग में चारों प्रकार का दुख, तन का, मन का, धन का, संबंधों का, इसीलिए कलयुग माना गया है। तो जहां चारों प्रकार का सुख है वहां विश्व में शांति है। आज जैसे आज की बाबा की मुरली में भी कितनी ऐसी गहरी बातें, एक एक मुरली में आप जाइए कितनी गहरी बातें आपको मिलेगी, कोई गहराई से और चिंतन करे। और कैसे होगी गहराई से सोच चिंतन, कैसे होगा? जब हम इतना अंतर्मुखी होंगे और अपने से लगाएंगे, कई बार हम मुरली पढ़ते ना, बस पढ़ लिया, अपने अपना नेमी नाथ बन करके पढ़ लिया, बस हो गया काम। लेकिन अपने साथ लगाना, ये बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, ये बाबा ने मुझे कहा है। किसी और के लिए कहा है तो ठीक है, मुझे क्या, कोई बात नहीं, सुना नहीं सुना बराबर। लेकिन ये भगवान के माँ वाक्य मेरे लिए है। आज भी बाबा ने कहा कि किसी को अगर पद पाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी पद मिलता है। कोई IAS बनता है, इतना SDM कलेक्टर बनता है, बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिलती है। किसी को कुछ पढ़ाई की ना तो मेहनत कितनी की होगी। अब इतना ऊंच पद पाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। सोचे कि हाँ हो जाएगा, जिस कोई बात नहीं, ड्रामा में जो मिलना होगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मोचरा खाकर छोटी मोट रोटी टुकड़ मिलेगा, वो पसंद है क्या? किसी को गालियां दो और कह लो एक रोटी, किसी की इंसल्ट करो और फिर उसको एक रोटी खिलाओ, वो कहेगा भाई तुम्हारी रोटी हमको नहीं चाहिए, मैं भूखा रहूंगा, लेकिन इंसल्ट लेकर रोटी नहीं चाहिए, भूखा रहना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हरे को अपना स्वमान तो प्यारा है ना, लेकिन अभिमान और स्वमान में कितना अंतर है। स्वमान माना आत्मा के जो गुण है उनका मान, स्व का मान। तो आत्मा के गुणों का मान माना जो मैं आत्मा जैसी हूं ओरिजिनल स्वरूप में, उसका अपने अंदर मान रखो, उसका नशा रखो, मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता है, करने दो कितना भी कोई मुझे कहे, मैं अशांत नहीं होऊंगा। स्वमान प्यारा है। पर किसने मुझे दो गाली दी, कुछ कहा, ठीक है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, मैं तो जानता हूं ना मैं कौन हूं। हाँ, अगर गलती है तो सुधार लो। कई बार हम कहते हैं ना, जो आपकी गलती निकालते हैं, जो आपकी कटाक्ष करते हैं, वो आपके सच्चे मित्र हैं, वो आपके सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वो आपकी गलती को बता करके आपकी गलती निकालना चाहते हैं, तो उनको अपना मित्र समझो। पर अभिमान आता ना, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, कोई इंसल्ट नहीं की, इंसल्ट की माना अभिमान है हमारे में। परंतु अभिमान है तो अपमान लगेगा, पर अगर अंतर्मुखी होकर के हम अपना अंदर देखेंगे, हाँ ये मेरी कमजोरी है और इसने हिम्मत रखी मुझे मेरी कमजोरी बताने की, तो थैंक्स दो, हम बदल जाएंगे। ये भी स्वमान है। तो ये सब अंतर्मुखता के अंतर्गत आता है। उस समय अपनी चेकिंग करो, समझो आपको कोई बुरा भला कह रहा है, अब उस समय रिटर्न तुरंत मत दो, कभी नहीं दो। पहले अंदर में मन में क्या सोचो, मन में क्या सोचना है, हाँ ये सब कोई कर्मों का हिसाब किताब है, ऐसे सोच सकते हैं, ये कर्मों का हिसाब किताब है, चुप तो हुआ, ठीक है, जो कुछ कहा ना, कोई किसी जन्म का या इसी जन्म का भी कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, चुप तो हो गया। पर वो और ज्यादा कर रहा है तो उस समय क्या सोचो, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट चल रहा है, ये ड्रामा में इस समय इसका ये पार्ट है, ड्रामा के अंदर रावण का भी पार्ट है तो राम का भी पार्ट है, पर इस समय इसका रावण का पार्ट है। एक एक्टर रावण का भी पार्ट बजा सकता है और वही एक्टर राम का भी पार्ट बजा सकता है, क्यों नहीं बजा सकता है, सब पार्ट बजा सकता है एक एक्टर, पर इस समय इनका ये पार्ट है। फिर अगर और कर रहा है तो उस समय क्या सोचो, हाँ पहले तो है कि भाई कर्मों का हिसाब किताब है, दूसरा है कि अपना पार्ट बजा रहा है, फिर अगर और कर रहा है तो जरूर ये सोचो कि मुझे अपने अंदर झांक के देखना है, हो सकता है ये कमी है मेरे अंदर, वो मेरी कमी सुधारना चाहता है, परंतु अगर हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं अंतर्मुखी होके कि ये कमी मेरी है नहीं, ये ईर्ष्या के वश कह रहा है, इसके अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या है, तो उस समय सोचो, क्या सोचेंगे कि चलो ये अंतर में बहुत दुखी आत्मा है, ईर्ष्या रखना इसमें भी अंतर में एक और ऊंचा हम सोच सकते हैं, जरूर ये मुझे अपने से सुपीरियर समझ रहा है ना, यानी मैं सुपीरियर हूँ उनसे, उनसे ऊंची हूँ, आगे हूँ, तभी तो ईर्ष्या कर रहा है। जो अगर अगर किसी से कम होता उसे ईर्ष्या थोड़ी करेगा, अगर मेरे से ईर्ष्या कर भी रहा है वो मेरे से कम अपने आप को आंक रहा है, इसीलिए मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, तो जरूर मैं उनसे ऊंची हूँ। अगर वो कमी नहीं है मेरे अंदर और फिर भी वो कर रहा है, तो अंत में हम क्या ऊंची सोच लाएंगे, ये आत्मा बहुत दुखी है, ये आत्मा बहुत अशांत है। अब ये दुखी अशांत आत्मा को मुझे क्या करना है, और दुखी करना है, और अशांत करना है, क्या करना है, कैसे मैं उसको शांति दे सकती हूँ? शुभ भावना शुभ कामना रख के बस, शिव बाबा उसको सद्बुद्धि देंगे, और क्या करेंगे। पर हम कोई ऐसा कर्म न करें जो हम अपना पाप का खाता बनाएं, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी होकर के अपनी जांच करना, और अंतर्मुखता के साथ फिर वही गंभीरता भी आती है, फिर वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये मेरे प्रति ऐसे सोचता है, अभी वो सोच रहा है पर मैं उसकी सोच कैसे बदलूंगी जब मैं उसके प्रति वो पॉजिटिव सोचूंगी। बहुत ऊंची बातें है पर कितना हम प्रैक्टिकल में करते हैं हम अपने अंदर देखें। और फिर जैसे बाबा ने परसों अव्यक्त मुरली में कहा, अगर आप कोई अच्छी सेवा करते भी हो ना तो उसकी वर्णन करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कही, राइट हैंड किसको कहेंगे, जो देना है, यही भावना है, अपना नाम मान शान महिमा मर्तबा ये सब नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा कितने गुप्त थे, कभी बड़ी सभा में बाबा ने भाषण नहीं किया, बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा थे वैसे हमें बनना है, बाप समान बनना है। और अभी तो देखो समय भी बहुत कम है, देख रहे हैं ना हालात संसार की, बहुत बुरा, बहुत धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है, अति आती गई है हर बात में। तो ये ब्राह्मण जीवन, भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हम इसको कैसे और श्रेष्ठ बनाएं, सफल बनाएं, उसके लिए ही सदा प्रयत्न हो। और आप उसके लिए ये भट्टी कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। कई फोन करके हमसे पूछते हैं ना, हम मधुबन में रहते हैं, ऊपर पांडव भवन में रहते हैं, कितने पूछते रहते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है मधुबन में, कैसे सब हैं। तो अच्छी बातें तो भी सुनाते होंगे ना, कि कोई बुरी बात भी सुनाते होंगे, अच्छी बात ही सुनानी है, क्या सुनाते होंगे, हम सब अपना काम खुद करते हैं, कोई लेबरर्स नहीं है, कोई नहीं, हम सब मेहनत सब करते हैं, और इतनी शांति है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो हम तो मधुबन में, तो अभी देखो पांडव भवन में फॉगी है, पांडव भवन में एकदम फॉग लगा हुआ है, तो सवेरे सवेरे तो कुछ धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो हम तो कहते हम तो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, कई बार बिल्कुल साइलेंस सन्नाटा होता है, एकदम आंगन में कोई नहीं होता, वो पहरे वाले भी पता नहीं कहाँ होते हैं। तो हम कहते अभी तो मूल वतन हो गया है, मधुबन तो मूल वतन हो गया है। तो सचमुच मूल वतन और सूक्ष्म वतन ही हम मधुबन में अनुभव करते हैं। तो फिर इसको नीचे नहीं लाना है ना, स्थूल में नहीं आना है। तो आप लोग भट्टी कर रहे हो तो भट्टी माना ही, अपने आप को सूक्ष्म वतन और मूल वतन में समझना, बस आज आपका कौन सा दिन है? फरिश्ता दिवस है ना, फरिश्ता दिवस। तो फरिश्ते कैसे होते हैं? अंतर्मुखी भी होते हैं, गंभीर भी होते हैं, उनको दुनिया धरती से कोई लेना देना नहीं होता है, हल्के होते हैं, कोई बोझ नहीं, कोई प्रकार की चिंता नहीं, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। सारा संसार मरा पड़ा है, बस खत्म, आप हुए, मर गई दुनिया। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, पर यही अंतर्मुखता और गंभीरता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो जो यहाँ पर बट्ठी कर रहे हो, सारी दुनिया की निगाहों से दूर हो और एक बाबा की गोद में बैठे हो, बाबा के याद में आगे बढ़ रहे हो, भगवान की पालना में पल रहे हो। और कुछ चाहिए? चाहिए कुछ और? कुछ चाहिए? हाँ, बाबा पूछते हैं कुछ चाहिए तो क्या कहेंगे बाबा को? चाहिए कुछ? कुछ नहीं जी बाबा, भरपूर है हम आत्मा, बस यही सदा बुद्धि में धारण करो। ठीक है, अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी योग में बैठेंगे, लेकिन ठीक है, अलर्ट है या जागृत करना पड़ेगा? हाँ, सब उठे कि? एक मिनट उठिए। हाँ उठिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ भले, हाँ ऐसे करो, जरूर जरूर करो, हाँ अच्छी तरह से करो। हाथ पैर चलाओ। अभी तो आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है, चलेंगे ना याद की यात्रा पर, तो यात्रा की तैयारी भी करनी है सबको, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सब शक्तियां धारण हो गई। चलिए बैठेंगे। अभी सब कौन सी यात्रा पर चलेंगे? अंतर की यात्रा, अंतर्मुखी रहना है, गंभीर बनना है, तो अंतर की यात्रा करेंगे।
पिता ने बताया।
चलिए एक अंतर की यात्रा पर। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाइए। ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। मैं एक आत्मा हूँ। अति शुद्ध हूँ। पवित्र हूँ। एक बेदाग हीरा हूँ। चमकता हुआ हीरा। बेदाग हीरा हूँ। मेरी चमक चारों ओर फैल रही है। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर मैं चमकता हुआ हीरा चारों ओर अपने शुद्ध प्रकंपन फैला रहा हूं। चारों ओर अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रहा हूं। प्रकृति में भी शक्ति भर रहा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा डबल लाइट हूं। बहुत हल्का हूं। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस मुझ आत्मा ने पहनी हुई है। साकारी हड्डी मांस का शरीर, साकारी संबंध, देह के आकर्षण सबसे परे, मैं देही आत्मा एक फरिश्ते की ड्रेस में, प्रकाश की काया में, और उड़ उड़कर मैं दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रहा हूं। मैं सर्व आत्माओं का कल्याणकारी हूं। सबका कल्याण हो। सब सुखी हो। सबके जीवन में शांति आ जाए। सारे विश्व में शांति हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक से ही मेरे सर्व संबंध हैं। एक से ही शक्ति प्राप्त कर मैं आत्मा सबको शक्ति के प्रकंपन दे रही हूं। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन अनुभव हो रहा है। मेरा मन अति शांत है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर में समाई हुई हूँ। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है। शांति तो मुझ आत्मा का शिव बाबा से अधिकार है। अब ये शांति के प्रकंपन मैं चारों ओर फैला रही हूँ। इस समय विश्व को शांति की आवश्यकता है। ईश्वरीय प्रेम की आवश्यकता है। मैं शांति और प्रेम से भरपूर फरिश्ता। सारे विश्व पर शांति और प्रेम के प्रकंपन फैला रहा हूं। जहां पवित्रता है वहीं शांति और प्रेम है। वहीं सुख और आनंद है। बाबा की याद में परमानंद का अनुभव कर रही हूं। ईश्वरीय लगन में मग्न आत्मा सब बंधनों को तोड़ फरिश्ता बन जाती है। मैं शिव बाबा की पीस मैसेंजर हूं। सबको शांति का संदेश पहुंचाना है। सब में शांति आ जाए, प्रेम और भाईचारा बढ़े, एकता आ जाए, और ये संसार सुखमय बन जाए। कितना आनंद ही आनंद है। अब खो जाओ उस परमानंद की अवस्था में।